काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 81, 52 राग धनासरी। कै बागे दी मूली हुसैना, तू के बागे दी मूली। एक बागा दे विची फूल अजाए, तू भी एक गंथूली। एक आपना आपी पछाने नाही, अवरा देखी क्यों भूली। दो इश्के दे दरियाओं कराही, मंसूर कबूली सूली। तीन शाह हुसैन पया दरी, उत्ते जे कर पवे कबूली। चार अजायब अर्थात अनोखे या विभिन्न, गंथूली अर्थात मामूली खुशबू। अवरा अर्थात दूसरों को, कराही अर्थात कठिन, कबूली अर्थात परवान। व्याख्या, ए हुसैन स्वयं को संबोधित कर शाह हुसैन कहते हैं, तू अपने आप को समझता क्या है? इसमें व्यंग है, तू कौन से बाग की मूली है? अर्थात तेरे में ऐसी कौन सी खासियत है जो बाकी लोगों में नहीं है? इसमें खेत की मूली नामक मुहावरे का प्रयोग करके व्यंग किया गया है, लेकिन यह व्यंग फकीर ने स्वयं पर किया है। एक बाग में जिस प्रकार अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं, तू भी उसी प्रकार एक साधारण खुशबू देने वाले जंगली फूल के समान है। यहाँ पर बाग और फूल से तात्पर्य दुनिया और अनेक तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्यों से है। गंथूली से भाव साधारण आम से है, जिसमें कोई खास विशेषता न हो। एक अपनी कमियों कमजोरियों और यहाँ तक कि बुराइयों को मनुष्य पहचानता नहीं है, परंतु दूसरे लोगों के गुणों और अच्छे कर्मों को देखकर दूसरों से ईर्ष्या करता है। दो इश्क का सागर पार करना अत्यंत कठिन काम होता है, जो हरेक के वश की बात नहीं, मंसूर को भी मौत को स्वीकार करना ही पड़ा। तीन यदि मनुष्य अपने आप को सिर झुकाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसकी प्रार्थना प्रभु के दरबार में कबूल हो सकती है। चार 53 राग धनासरी। कोई दम जीव दिया रुशनाए, मुएया दी खबर ना काए। एक रहाउ चहु जड़िया रली डोली चाए, साहुरने पहुँचाए। सस निनाणा दे दिया ताहने, दास विहूड़ी आए। कब्र निमाड़े विच वगड़, कहिया बन चलाया, डाढ़े दिया वहिया। पृष्ठ 82 रहिया हूल हवाएं। कह हुसैन फकीर रबाना, दुनिया छोड़ जरूरत जाना। रब डाढ़े कलम बगाए, दम अर्थात सांस लेते हुए, डोली अर्थात अर्थी, साहुरने अर्थात कब्रिस्तान, वहिया अर्थात निर्देयी दूत, हूल हवाई अर्थात अकड़ शान। व्याख्या, जीते जी मनुष्य को मरे हुए लोगों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं होती, जबकि वह इस सच्चाई को जानता है कि मौत उसे भी एक दिन आएगी। रहाऊ चार लोग अर्थात कहारों की भांति उसकी अर्थी उठाकर उसे उसकी ससुराल अर्थात आखिरी मंजिल कब्रिस्तान में पहुंचाएंगे। ससुराल अर्थात परलोक में खाली हाथ पहुंचने से सास और नंदे उसे ताने देंगी। यहाँ पर दहेज बगैर जाने से भाव इस दुनिया में किए अच्छे कर्मों के बगैर जाने से है। मनुष्य का अच्छा चाल चलन, नेक नियति और कर्म ही परलोक में उसका दहेज बनते हैं। सास ननद से भाव उन दूतों से है जो उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और अच्छे कर्मों को न देखकर उसे कोसते हैं। आखिर में तो कब्र में ही समाना है, जिसमें मिट्टी खोदकर दबा दिया जाता है। इस डाढ़े अर्थात सख्त स्वभाव वाले परमात्मा से कोई बच नहीं सकता। इसके आदेश पर सारी अकड़ और शांत धरी की धरी रह जाती है। इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान ने जिस प्रकार अपनी कलम से मनुष्य की उम्र लिखी होती है वह उतनी ही भोग पाता है। 54 राग वड़हंस। कोई द मार ले रंग लंगी रलिया, धन जो बंदा मार ना करिए, बहुत सयाणिया छलिया एक रहाऊ, जिन्हा नाल बालपण खेड़िया से, सैया उठ चलिया एक, बाबल आतड़ छड़ गईया, साहरड़े घर चलिया दो, इह गलियां सुपना भी थी सन बाबल वलिया गलियां, तीन कह हुसैन फकीर साईदा कर ले गाली भलिया, चार रंग रंग लिया अर्थात मौज मस्ती, आतड़ अर्थात आंगन, साहुरड़े अर्थात कब्रिस्तान, गाली अर्थात बातें, भलियां अर्थात अच्छी। व्याख्या, सांसारिक पदार्थों की मौज मस्ती बहुत आकर्षित करती है, परंतु इस पृष्ठ 83 आकर्षण में खोकर अपनी जवानी और सुंदरता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जवानी और सुंदरता सदा रहने वाली नहीं है, इस पर अभिमान करने वाले बहुत से सयाने और समझदार लोग भी धोखा गए, अर्थात बाहरी दिखावा और जवानी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर मनुष्य स्वयं पर गर्व महसूस करने लगता है, जबकि यह प्रशंसा सिर्फ भ्रम और भुलावा है। इसी भुलावे में आकर लोग अपनी समझदारी भी गवा बैठते हैं। वस्तुतः यह सभी अस्थिर होता है। एक रहाओ, जिन सहेलियों के साथ बचपन बिताया और खेल तमाशे किए वह सभी सहेलियां अपने साई अर्थात प्रीतम के पास चली गईं, अर्थात जो मनुष्य समय रहते अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते वस्तुतः वह दिमाग से बच्चे ही बने रहते हैं, जो इस सांसारिक चमक धमक को असली मान इसके खेल तमाशों में ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का बचपन उम्र के हिसाब से नहीं अपितु समझदारी के लिहाज से कभी खत्म नहीं होता, और इसी अज्ञानतावश वह जल्दी ही इस संसार से कूच कर जाते हैं। एक सभी सहेलियों अर्थात मनुष्यों को इहलोक छोड़कर परलोक अर्थात मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। दो इन गलियों अर्थात इस संसार में बिताया हुआ जीवन असल में सपने के समान है और सपना कभी भी यथार्थ नहीं होता, साथ ही वह एक दिन टूट भी जाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वथा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संसार में कुछ समय के लिए आया है, यहाँ रहते वह जो भी कार्य करता है वह यथार्थ नहीं है और न ही उसके साथ जाएंगे। जैसे सपना भ्रम और यथार्थ का प्रभाव डालता है परंतु यथार्थ होता नहीं, यहाँ का जीवन भी सपने के समान ही है। तीन इसलिए फकीर की बात मान और इस संसार में रहते हुए कोई अच्छी बातें कर ले, कोई नेक काम कर ले जो उसके साथ जाएंगे, बाकी सभी कुछ तो व्यर्थ है जो यहीं पर छूट जाएगा। 4 55 राग रामकली। गली वो कीती साढ़े ख्याल पई, गल पई वो निबाही लोड़िए। एक रहाओ, शमा दे परवाने वांगू जल्दिया अंगिना मोड़िए, हाते इश्क महावत राजा अंकसु दे दे होड़िए। दो कह हुसैन फकीर साईदा लगी प्रीति ना तोड़िए। तीन ख्याल पई अर्थात पीछे पड़ गई, शमा अर्थात दिया, परवाना अर्थात पतंगा, अंकुश अर्थात हाथी को काबू में रखते लोहे का सुआ। पृष्ठ 84 इस काफी में शाह हुसैन इश्क की बात करते हैं। उनके अनुसार प्रीतम से इश्क के बारे में सुना और वो इश्क में गिरफ्तार हो गए, अब तो इसे निभाना जरूरी हो गया है, अर्थात इस एक पंक्ति में ही वह इश्क के आकर्षण उसकी गिरफ्त में आने और अंत में उसे निभाए जाने की आवश्यकता पर जोड़ देते हैं। शायद यह इश्क शय ही ऐसी है कि एक बार इससे सामना होने पर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। यह इश्क फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मनुष्य को खुद भी आशिक बन बहुत सुकून मिलता है और वह प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे अपने जीवन संग निभाएगा। और इश्क की सफलता भी इसी में है कि उसे आखिरी सांस तक निभाया जाए। एक रहाउ इश्क की आग में जलने वालों को अपने आप को पूर्ण रूप से अपने इश्क में समर्पित हो जाना चाहिए। इस पंक्ति में समर्पण पर वह बल देते हैं क्योंकि पतंगा भी क्षमा के इश्क करता है, परंतु उसकी ओर खींचे जाने पर जब वह आग उसे जलाने लगती है तो वह उस अपने शरीर को बचाने के लिए अपने अंग मोड़ने और सिकोड़ने लगता है। इसी ओर इशारा करते हुए शाह हुसैन कहते हैं कि पतंगे का आग से इश्क सिर्फ आकर्षण के कारण होता है। इसी आकर्षण के तहत वह आग अर्थात क्षमा के करीब चला जाता है, परंतु पूर्ण समर्पण की भावना न होने के कारण वह अपने अंगों को सिकोड़ने की कोशिश करता है, मगर फिर यह कोशिश बेकार सिद्ध होती है और अंत में पतंगा जलकर खाक हो जाता है। इस पंक्ति में इश्क के आकर्षण और समर्पण दोनों के अंतर को स्पष्ट कर इस बात के लिए चेताया गया है कि इश्क में सिर्फ आकर्षण से कुछ नहीं होता, अंतिम प्राप्ति समर्पण से प्राप्त होती है, जो कि मनुष्य में अपने प्रीतम अपने परमात्मा के लिए अवश्य होना चाहिए। इश्क भी और भी विस्तृत ढंग से बयान करते हुए हुसैन कहते हैं, इश्क हाथी के समान बलवान होता है, इसका महावत रांझे के समान होना चाहिए जो इसे किसी दूसरी दिशा में जाने से रोक सके। इश्क का वग मनुष्य को बहुत तेजी से अपने साथ बाहर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। इस वेग से गिरने का डर भी बना रहता है, जिसकी ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इसे सही दिशा में दिशा की ओर ले जाना जरूरी होता है। दो, फकीर का मानना है कि जब किसी से इश्क प्रीत हो जाए तो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात इसे अंतिम सांस तक निभाना चाहिए। तीन, पृष्ठ 85, 56 रांग झंझोटी। गाहकु वैंदा ई कुछ वटी ले, आया गाहक मूल ना मोड़े, टका पंजाहा घट ले। एक रहाउ पेयड़े दिनी नार दिहाड़े, हरी वती झाती धत ले। बाबल दे घर दाज विहुड़ी, दड़ी बड़ी पुड़ी कहत ले। एक होखा नाल उधार करेंदी, साथहु भी कुठ हथी ले। कह हुसैन फकीर निमाड़ा, एही शाह दी मती ले। दो, वैंदा अर्थात जाता हुआ, पेई अड़े अर्थात मायका, हरी अर्थात परमात्मा, वल्ली अर्थात की ओर, बिछुड़ी अर्थात बगैर, दड़ी बड़ी अर्थात उलझा हुआ धागा। व्याख्या, इस काफी में सूफी फकीर का कहना है कि जो सयाने या पहुंचे हुए साधु महात्मा हो, अर्थात जिन्होंने परमात्मा को करीब से जाना और समझा हो, उनसे कुछ अनुभव या दीक्षा प्राप्त कर ले। ऐसे प्रभु के प्यारे शिष्यों के अनुभव से वंचित नहीं रहना चाहिए। बेशक दुनिया का कामकाज करते हुए तुम्हें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, इस क्योंकि इन महात्माओं की संगति और शिक्षा से दुनिया के नुकसान या काम का हर्जा कोई अहमियत नहीं रखते। एक रहाउ इस मायके में अर्थात इह लोक में तो मनुष्य ने 4 दिन अर्थात एक उम्र भर ही रहना है, बाद में तो उसे प्रभु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना है, तो फिर क्यों ना थोड़ा सा समय उसके नाम जाप में भी लगा लिया जाए, अर्थात प्रभु के प्यारों या गुरुओं की संगति कर कुछ हासिल कर लिया जाए। इहलोक में तो बिना दहेज के गुजारा संभव है, परंतु ससुराल या प्रीतम के घर बगैर दहेज अर्थात नेक कर्म के बगैर रहना संभव नहीं, इसलिए समय रहते कुछ तो उलझे हुए जीवन में से परमात्मा के नाम सिमरन के लिए समय निकाल ले, अर्थात उलझी दिनचर्या और जीवन में से कुछ तो नेक कर्मों की पूर्णि काट ले। प्रीतम के घर में असली यही दहेज काम आता है। एक, दुनियावी कामों में कई बार उधार करना अर्थात समझौता करना पड़ता है। प्रीतम के घर जाने के लिए कभी कभी साधु संतों के साथ को भी अपना लेना चाहिए, अर्थात यदि मनुष्य यह सोचता है कि वह स्वयं ही समझदार है और अकेले ही इस कठिन मार्ग पर चलने की हिम्मत रखता है तो भी उसे समझौते की तरह ही पहुंचे हुए सयानों के अनुभवों से या सीख से लाभ उठाने में कोई हर्ज नहीं है, इससे उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। पृष्ठ 86। फकीर हुसैन का मानना है कि सयानों विद्वानों या फकीरों से या फकीरों भी इसी शिक्षा को जरूर अपनाना चाहिए। 257। राम राग रामकली। गोइलड़ा दिन चार कूड़े सैया खेड़ आइया नी, एक रहाऊ भली माऊ ना खेड़ी देई, हंझू दर्द रुआइया नी, चंद के चांदन सैया खेड़ी, गाफुल तिमरू रैया आनी, एक साहुरड़े घर अलबती जाना जानन से समराइया नी। कह हुसैन फकीर रिमाणा जिन्ना चाइया से तोड़ी निबाही आनी। गोइलड़ा अर्थात खेतों में पशुओं के लिए बनाई हुई घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी, चांदन अर्थात चांदनी, गाफुल अर्थात अनभिज्ञ या नासमझ, तिमरू अर्थात अंधेरे, अलबती अर्थात अवश्य, सभराइया अर्थात सयानी या समझदार। व्याख्या, यह सांसारिक जीवन गोइलड़े के समान है जो घास फूस और मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी होती है, यानी यह जीवन अस्थिर है और इस झोपड़ी में जो स्वयं कच्ची और काम चलाऊ है उसमें लकड़ियां और सहेलियां खेलने के लिए आई हैं, अर्थात इस अस्थिर जीवन में अस्थिर रहने वाली जीवात्माएं चार दिनों के लिए खेलने और मौज मस्ती करने के लिए आती हैं। एक, कई माएँ खेलने को बुरा मानती हैं इसलिए खेलने से मना करती हैं। इस मना किए जाने पर कुछ लड़कियों अर्थात जीवात्माएं बहुत रोने लगती हैं, अर्थात कुछ सयाने लोग इस जगत तमाशे को समझते हैं और अपने उपदेशों और अनुभवों से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु कई बार यह सीख समझ में नहीं आती और इसे बहुत बड़ा दुख मानकर जिन्हें इस खेल तमाशे से दूर रखा जाता है वो रोने लगती हैं, दुखी होती हैं। लेकिन जो लोग यह समझ लेते हैं कि यह मौज मस्ती और खुशी अस्थिर है वह सुखी हो जाते हैं। इस पंक्ति को दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। कुछ सहेलियां जहां चांदनी होती है वहां पर जाकर खेलना पसंद करती हैं और ना समझ लड़कियां अंधेरे में ही डूबी रहती हैं, अर्थात जहां पर ज्ञान का प्रकाश और चेतना की शीतलता व्याप्त होती है मनुष्य अर्थात समझदार वहां पर जाना पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में वह इस सत्य को जानते हैं कि उनका जीवन एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वह अपने जीवन में पहुंचे हुए साधुओं फकीरों की संगति कबूल करते हैं ताकि उनके अस्थिर जीवन में ज्ञान की रोशनी प्रवेश कर सके। जबकि पृष्ठ 87 अनभिज्ञ अनभिज्ञ और नासमझ लोग इस सच्चाई से अनजान होने पर अच्छे लोगों की साथ प्राप्त नहीं करते और सदा अज्ञान के अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। एक, समझदार और चेतन लोग इस बात को जानते भी हैं और हृदय से भी स्वीकार करते हैं कि अंत में प्रीतम के घर जाना ही मनुष्य की अंतिम मंजिल है। फकीर के अनुसार इस ज्ञान को जानने वाले इस सत्य को अंतिम सांस तक निभाते हैं।